Yashodananda, Brajadananda, Yashoda. Yamuna Tidavana Charu, Jajadadha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Viva.
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतिञ्जासम् तदुजयमुदीरये दशदायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टके। श्रीमद्भागवतम क्रम के अनुसार सातवें स्कंद के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक तो आप मेरे पीछे दोहराएंगे। धर्मार्थम अपि नेत यात्रार्थम बाधनो धनम अनिहानि मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। धर्मार्थम अपि नेत यात्रार्थम बाधनो धनम अनिहानि मानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। एक जेंट्स एक लेडीज, लेडीज धर्म तथा आर्थिक विकास में अभी निसंदेह ना नहीं इरहेता प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यात्रार्थम शरीर निर्वाह के हेतु वा अथवा अदाना निर्धन होते हुए भी धनम धन की अनिहा अनिच्छा बनाए रखे। अनिहमानस्य ऐसे व्यक्ति का जो अपनी जीविका अर्जित करने हेतु प्रयास नहीं करता है महाहे अजगर जैसा महासर्प एवा सदृश विद्या जो प्रयास किए बिना जीविका प्राप्त कर लेता है। अनवर तात्पर्य श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा निर्धन होकर भी मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह हेतु या विख्यात धर्मज्ञ बनने के हेतु अपनी आर्थिक दशा का सुधार करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार एक अजगर एक स्थान पर पड़ा रहता है फिर भी वो अपनी जीविका हेतु कोई चेष्टा न करने पर भी शरीर निर्वाह हेतु भोजन प्राप्त कर ही लेता है, उसी प्रकार निष्काम व्यक्ति बिना किसी चेष्टा के अपनी जीविका का बिना प्रयत्न किए ही उनकी जीविका चल जाती है। तात्पर्य मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत विकसित करने के हेतु है। मनुष्य को अपने शरीर निर्वाह हेतु किसी प्रकार की जीविका अर्जित करने का प्रयास करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। इसे यहाँ अजगर का उदाहरण देकर समझाया गया है। अजगर एक ही स्थान पर लेटा रहता और अपने उदर पोषण हेतु जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर जाता ही नहीं, फिर भी भगवत कृपा से उनका पालन होता है। जैसा कि श्री नारद मुनि ने अपने उपदेश में वेद व्यास महाराज को 1.5.18 में कहा है कि तत्सर्य तो प्रेतित को विदो, मनुष्य को केवल अपने कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए, उसे किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं करनी चाहिए, यहाँ तक कि जीवों को उपार्जन हेतु भी नहीं करनी चाहिए। इस मनोवृत्ति के अनेक उदाहरण प्राप्त है। उदाहरणात्मा द्वंद परिपाठ कभी किसी से भोजन मांगने नहीं जाते थे। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद ने कहा है कि कस्मात भजंती कवजो धन दुर्मदान धन, ऐसे व्यक्ति के समीप क्यों जाया जाए जो धन से अंध हो गया है। प्रत्युत मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित रहना सीखना चाहिए और इस आंदोलन का प्रचार प्रसार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे भक्तों की समस्त आवश्यकता पूरी करेंगे। इस प्रसंग में अजगर वृत्ति को अत्यधिक सराहा गया है। कोई अत्यंत निर्धन क्यों न हो, उसे कृष्ण भावनामृत मात्र में अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए और अपनी जीविका अर्जित करने की कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अमज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोहरिष्टं स्थापितं येन भूतले सोयं रूपगदामयं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देहं शिवगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नमश्नवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता शिवशाखन्वितं मुखं करोति वाचां पङ्गुमलङ्घयति गिरिं यत्पातमहमन्दे परमानन्दमाधव श्रीगुरुनदिनतां श्रीचैतन्यैश्वरं जयतं सुरतपङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजो श्रीराधामदनमोहन वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्णचैतन्यप्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामने नमस्ते। सारस्वती देवी गौरवाणी विचार में निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदार हरे कृष्ण। तो आप लोग ये श्रवण करते आ रहे कि किस प्रकार श्री युधिष्ठिर महाराज को माध्यम बना करके जगत के जीवों को श्री नारद जी बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं और इस शिक्षा के अंतर्गत जो आज का ये श्लोक है वो हम विधि भक्ति कार्य के लिए अत्यंत उपादेय श्लोक है। वो इतना उपादेय श्लोक है कि कोई व्यक्ति अगर इस श्लोक को हृदयंगम कर ले तो बहुत बहुत कुछ उनके जीवन से विपत्तियां हट जाएगी। इस समस्त विपत्तियों का कारण केवल हम लोग की इच्छा है। इच्छा के कारण हमको इस शरीर मिला है और वही इच्छा आगे नाना प्रकार का शरीर में हमको धकेल देगी। भक्ति करते हुए भी हम अनेक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि मनुष्य शरीर ही मिलेगा जो कि भक्ति का ये फल है। तो क्यों नहीं इसी जीवन में इस श्लोक को आत्मसात किया जाए। बहुत सुंदर श्लोक, आइए हम लोग उनमें जाते हैं कुछ आचार्यों की टीका के साथ। लेकिन उनसे पूर्व कुछ इस श्लोक को समझ ले। धर्मार्थम पे निहते यात्रार्थम वा अधनो धनम। कोई धर्मात्मा व्यक्ति भी क्यों नहीं है, उनको भी कभी भी धर्म हेतु धन एकत्रित नहीं करना चाहिए। हाँ, धर्मार्थम अभी और यात्रार्थम अभी। यात्रा का अर्थ जीवन यात्रा। व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के लिए भी फिक्र नहीं करनी चाहिए, उनको केवल एकमात्र यही चेष्टा करनी चाहिए कि जिस चेष्टा से भगवान के भक्त और श्री भगवान उनसे संतुष्ट रहे। जी, जब हमसे साधु वर्ग संतुष्ट रहेंगे, भक्त लोग संतुष्ट रहेंगे, तो श्री भगवान अपने आप उस व्यक्ति के ऊपर संतुष्ट होते हैं। जी, इसलिए व्यक्ति को अत्यंत प्रयत्न पूर्वक साधु लोग की प्रसन्नता हेतु कार्य करना चाहिए। जी, तत्स्य हेतु प्रयत्त कोविद। बुद्धिमान व्यक्ति, कोविद माने बुद्धिमान व्यक्ति। जो श्री प्रभुपाद महाराज ने इस श्लोक कोट करके एक अद्भुत शिक्षा दिया है हम लोग को, उन शिक्षा में शनि हम लोग शनि शनि जाएंगे। तो कहते हैं व्यक्ति को उस हेतु की सिद्धि के लिए ही मात्र प्रयत्न करना चाहिए जो ऊपरी अध ब्रह्मताम कहते हैं, उन ब्रह्मलोक से लेकर के एक दिन के पर्यंत अनेक योनियों में घूमने पर भी जिनकी सिद्धि नहीं होती है या जिनके पास वो सिद्धि नहीं है, उस हेतु के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि वो हेतु क्या है, है कि नहीं? वो ऐसा कौन सा हेतु है जो ब्रह्मा को भी जिनकी सिद्धि नहीं है? वो है भक्तों की संतुष्टि। जी, वैष्णवों की संतुष्टि रूपी ये परमार्थ हम सबके हाथ में है हस्तगत, जो कि श्री प्रभुपाद महाराज ने कृपा करके विधि भक्ति बहुत सुंदर रूप से और यम नियम के साथ हमको बताया है। कोई कमी नहीं है इसमें, बस कमी बस है तो हमारे आचरण का है। तत्स्य में हेतु का अर्थ ये है कि उसी वस्तु के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। किस वस्तु के लिए? देखिए, इस संसार में समस्त जीवों की प्रधान डिमांड दो है, एक उनको शाश्वत जीवन चाहिए, वो कभी मरना नहीं चाहता है, सबसे बड़ी डिमांड है। और जी करके क्या करेंगे? बोलते जी करके केवल निरंतर सुख भोग, ये दो डिमांड है। यद्यपि 13-14 क्वालिटी जीवात्मा की बताई गई है, लेकिन ये दो जो है ना, वो तो प्रत्येक जीव देहधारी जीव की, प्रत्येक देहधारी जीव की डिमांड है। 13-14 क्वालिटी शास्त्र में लिखा है, उनमें हम नहीं जाएंगे, बट ये दो जो है ना, उसको सहज समझा जा सकता है। हम से कौन ऐसा है जो निरंतर जीने की इच्छा नहीं रखता है और सनातन सुख की इच्छा भी हमारे हृदय में है, है ना? एक ऐसा सुख जो कभी भी दुख में परिवर्तित ना हो। तत्स्यम हेतु प्रयत्त कोविद। कोविद बुद्धिमान व्यक्ति को उस हेतु की सिद्धि के लिए केवल प्रयत्न करना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद महाराज ने हमको हस्तगत करा दिया है। लो लो उठो, केवल यही करो। बीच में हमारा मन आता है, रोड़ा अटकाता है बीच में। क्या रोड़ा है? हम भजन करेंगे लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, है ना? इसको भजन नहीं कहते हैं, इसको हमारी इच्छा कहते हैं। हम इच्छा का पोषण करना चाहते हैं जी, भजन थोड़ी करते हैं। हाँ, कुछ नाम कर लेते हैं, कुछ विधि भक्ति का पालन कर लेते हैं, ये हम नियम भी पालन करते हैं, फिर क्या हो गया? इससे क्या? भक्ति चलनी चाहिए भगवत भक्तों की इच्छा से और शास्त्र की इच्छा से, अर्थात भगवत इच्छा से, हमारी इच्छा से भजन कभी चले, हमारी इच्छा है इसी प्रकार ग्रस्त जीवन में बने रहे और फिर इसी प्रकार मृत्यु आ जाए, थोड़ा थोड़ा भजन भी करना है, थोड़ा थोड़ा गृहस्थी का भी सुख भोग मिलता रहे। देखिए इसी बात को यहां जीवों के लिए डेंजर बताते हैं, भक्तों के लिए भी भयावह है। ये नहीं हम भक्त हो गए इसलिए सब कुछ हो गया हमारे लिए, ऐसा बात नहीं है, हमारे लिए भी ये भयावह है। क्योंकि कौन मरना चाहे, कौन पुनर्जन्म लेना चाहते हैं भक्तों में, खास मूर्ख लोग तो बोला करते हैं कोई बात नहीं, अगर कुत्ते का जन्म मिल जाए तो और अच्छा है, टेंशन नहीं है, कितना टेंशन कुत्ते को पूछिए, आपको क्या मालूम है ना। लोग बोल देते हैं क्या दिक्कत है, अगर कुत्ता भी बन गया तो आराम से जिएंगे खाएंगे बस मजा मारेंगे। हाँ वो दूसरे कुत्ते से मनुष्य को भय नहीं लगता है, लेकिन एक कुत्ता दूसरी गली में जाता है तो पता चलता है क्या टेंशन है। और मनुष्य इस गली में उस गली में कहीं भी निकले कोई टेंशन नहीं, लोग खट से बोल देते कोई बात नहीं टेंशन नहीं, कोई जीवन नहीं है टेंशन नहीं, केवल जीवन है तो अनिच्छुक भक्त का टेंशन विहीन जीवन है, जिसके जीवन में प्राकृत इच्छा कुछ भी नहीं है। खैर यहां धन को दे करके एक महत्वपूर्ण वस्तु को इसलिए दिया गया है, बाकी उनके पीछे सब कुछ है जी। उसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने हेतु सिद्धि के लिए सबसे पहले काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य ये जो छह रिपु है ना उनको जीतने के लिए बता रहे हैं। उसमें से कामना है जो धन की हो सकती है, कुछ भी कामना हो सकती है, मान लीजिए किसी को धन की कामना नहीं है लेकिन उनको दूसरी 50 कामना है, केवल धन ही कामना के लिए है ऐसा बात नहीं है। प्रमुख यहां बताया गया है जीविका उपार्जन के लिए भी धन की इच्छा न करे, कितना डेंजर होगा, धन की इच्छा कितनी भयावह होगी आप समझ सकते हैं। इससे देखा जाता है अपनी संस्था में तो कम देखा जाता है, कई संस्था में साधु लोग जितने धनी है ना गृहस्थ उतने नहीं है, अपनी संस्था में कुछ बिगाड़ आ गया है, ऐसा नहीं है कि हम लोग शुद्ध है सब लोग, लेकिन वो कितना भयावह। अर्थात भगवान का भजन करते हुए हमको विश्वास नहीं है भगवान के ऊपर कि मेरे जीविका चलाएंगे, वाह रे वाह भजन है, कैसा भजन है, विश्वास नहीं है कि हमारी जीविका चल जाएगी। सबसे पहले भगवान में विश्वास चाहिए तब भजन ठीक से चलेगा। कैसे भजन चलेगा भाई, भजन के अलावा दूसरी 10 इच्छा है उनकी पूर्ति के लिए भागेंगे तो समय कहां है। तब प्रयास न कर्तव्य जो तो आयुर्वेव्य परम न तथा विंदित क्षेमम मुकुंद चरणाम जम, श्री प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है। तब प्रयास न कर्तव्य, ऐसा प्रयत्न व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिससे ये परमायु व्यर्थ जाए। ये मनुष्य जीवन की जो आयुष्य है उनको परमायु बताया गया है, उनकी एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, वो इतना कीमती आयुष्य है, करोड़ों जीवन के बाद ये मनुष्य योनि मिला है जी। और उसमें झगड़ा टंटा कुत्ते की तरह करते हो और झगड़ा का कारण इच्छा है और कुछ नहीं, इसलिए व्यक्ति को जहां है वहीं से इस लोक पाठ करने के बाद सब स्टॉप कर देना चाहिए और केवल मात्र भजन करना चाहिए। बोले ना हम तो पहले से त्याग करके वृंदावन आ गए हैं, अरे त्याग करके आप लाख जाओ लेकिन हमारे चित्त में जो काम क्रोध मद लोभ में मोह है, वो अगर नहीं त्यागा है तो हमने क्या त्यागा है? हमारा त्याग क्या भलीवार करेगा? हमारा बाह्य त्याग से कुछ नहीं होगा, आंतरिक त्याग। धर्मार्थम अपि न एते धनम। देखिए, एक धार्मिक व्यक्ति को भी, धर्मात्मा व्यक्ति को भी धर्म के लिए धन की कामना नहीं करनी चाहिए। जी बताइए। नहीं, हम तो धंधा बिजनेस सब छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा कवर का तो इच्छा रहता है। कहीं जाते हैं ना तो छोटा सा कवर, भले ही ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन कुछ इच्छा कवर का बना रहता है। नहीं, समझ लीजिए, जीवन में सबसे बड़ा निष्फल व्यक्ति का ये द्योतक है। श्लोक के अनुसार बोल रहा हूं मैं, निष्फल हो जाएगा उनकी भक्ति फलीभूत नहीं। जो फल है कृष्ण प्रेम, उनको वो देगी नहीं, बाकी तो सब फल देने वाली है भक्ति। पर मूल फल जो है कृष्ण प्रेम, उससे व्यक्ति रिक्त रहेगा। इसलिए कहते धर्मार्थम अपि, ठीक है, एक आचार्य लिखते हैं, ठीक है, धर्मार्थम अपि, लेकिन वो कहते हैं कि जीविका के लिए तो करना चाहिए ना। बोले नहीं, जीविका के लिए भी नहीं, ये बता रहे भक्त धनु। कहते ननु धनाभाव धर्म सिद्धि न भवे तरीसा मा भवतु। अगर मान लीजिए कोई धर्म के लिए धन नहीं मांग करके धर्म का आचरण नहीं करेंगे तो धर्म नहीं होता है, तो कोई बात नहीं हो। वो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं, परंतु धनाभावन भोजन इच्छा बोधन आच्छादन बिना जीवन में कथम साधित आसन किया। वो कहते हैं, लेकिन जीविका कैसे चलेगा भाई, कुछ ना कुछ तो कमाई चाहिए। और लोग तो यहां तक बोलते हैं, देखो भोजन थाली में आया है, लेकिन उनको मुख में तो डालना पड़ेगा ना, ये तो परिश्रम लेना पड़ेगा ना। उदाहरण वहां का दे देते हैं, और काम कहां का करते हैं, उधर करोड़ों बटोरने का काम है। उदाहरण प्लेट का दे रहे, प्लेट से खाने में कौन मना करता है, सामने आया खा लो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन आपकी प्लेट में क्या क्या होना चाहिए, ये इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो सामने आया भगवत प्रसाद, कांदा लहसुन नहीं, जो सामने आया। देखिए, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये श्लोक कोट किया, तस्य हेतु बोले महाहेर इव। कहते अजगर की तरह, अजगर की जैसे जीविका चल जाती है तो क्या मनुष्य की नहीं चलेगी क्या? अजगर को तो खूब खाना चाहिए, उनको भूख भी खूब लगती है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, और खाने के लिए तो कतई ही नहीं जाता है। बताइए, उनके मुख में खाना आ जाता है, उनको हाथ भी नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति बोला, ठीक, बोला अजगर को हाथ है, मुख में आता है, मुख में चल करके सामने, हमारे भाग्य में है ना, मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारा विश्वास चाहिए, सबको विश्वास था। इतने अविश्वसनीय हम लोग हैं कि देखिए, केवल भोजन की इच्छा है, इस पर भी कितनी असंतुष्टि है। हम लोग अपनी प्लेट को नहीं देख के दूसरे की प्लेट देखते, एक आधा आइटम ज्यादा नहीं है ना, और सब कुछ होने के बाद में कहेंगे दही नहीं है हमारा, नहीं है, उनके अभाव में मत रहो, खाओ, जो है उनका भी आनंद जाएगा। यार यार दही नहीं मिला, दही नहीं मिला, आज तो हलवा मिला ना, तो हलवे को खा करके संतुष्ट हो जाओ, दही नहीं। लेकिन वो दही की नहीं की इच्छा इतनी पेन करती है कि वो हलवा का आनंद भी, ये दशा है। वस्तुतः ये कामना कितनी खतरनाक है, इनको समझना चाहिए। ये कहते हैं, कहते ठीक है ना, अनिहास अनिहमानस देह यात्रा अर्थम धनार्थम अपि चेष्टम अकुर्वत पुंस अनिहा। क्रिया निवृत्ति उपलक्षित दैव शब्द वाच्य प्रारब्धम निवृत्तिदा जीविका संपादिक इत्यर्थ। तो बोलते हैं देखिए सबकी जो जीविका चलती है वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उनको मिलना है, इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं तत्प्रयास और न कर्तव्य। व्यक्ति को केवल हरि भजन के अलावा और कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए भाई, प्रयत्न तो करेंगे। बोले नहीं करने पर भी मिलेगा, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, थोड़ा धैर्य रखना। भक्तों को धैर्य की कमी है, इसलिए रूप गोस्वामी भगवान उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनान सिखाते हैं, क्योंकि धैर्य की बहुत कमी है। अब देखिए 9 बजे नहीं है तब सिर्फ चाहिए क्लास खत्म हो, अरे 9 नहीं बजाए भाई कैसे खत्म कर दे, 9 बजे करेंगे लेकिन 9 बजने का कितना वेट है, तो वो इच्छा की वेट के कारण इधर प्रवचन जा रहा है और उधर इच्छा प्रसाद रूम में ले जाती है, कौन सा सब्जी बना होगा यार, इसका होगा कि नहीं जो हमें पसंद है, फेवरेट होगा कि नहीं, 2 ही बार तो प्रसाद मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग विरक्त तो हो गए हैं, भक्त लोग माने विरक्त तो हो गए, ऐसा बात नहीं है। या अजगर की तरह सोए पड़े रहो, अजगर वृत्ति लिखा है श्लोक में, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा तत्स्य हेतु प्रयत्न, उस श्लोक कोट कर दिया, बोले उस हेतु की सिद्धि के लिए व्यक्ति को रात दिन जगना चाहिए। केवल दिन में नहीं रात्रि में भी जगना चाहिए, इस हेतु की सिद्धि के लिए, क्या न परमार्थ की सिद्धि के लिए। निरंतर प्रयत्न चालू होना चाहिए, नींद में भी प्रयत्न चालू होना चाहिए। अगर नींद है ना, नींद आती है तो नींद में भी कुछ लोग है जो जप माला चलती है नींद में, अरे यार रात्रि में भी नहीं सोते हैं, तो दूसरे को सोने देते हैं घड़ी सोते हैं, इसमें भी जप माला चालू है, अरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ इसको कहते हैं अथक प्रयत्न। हम केवल प्रयत्न कर सकते हैं, बाकी साधु और भगवान की कृपा के निर्भर है, इसलिए धैर्य के साथ व्यक्ति को हर काम करना चाहिए, निश्चय और दृढ़ता के साथ, ये 3 चीज अनिवार्य है भगवत भक्ति में, हम उनका निवारण नहीं कर सकते। उन कर्मों को तत्त कर्म प्रवर्तना, उन कर्मों का अनुसरण करने के लिए व्यक्ति को दृढ़ निश्चय होना चाहिए और धैर्य के साथ, अगर न हुआ सिद्धि कोई बात नहीं, अगले जीवन में होगा, दिक्कत क्या है। पर अगर कामना के लिए मर रहे हैं तब तो हो गया मंगल, तब तो कोई कल्याण नहीं होगा। इच्छा हृदय में रख करके अगर हमारा मृत्यु हो गया, इच्छा क्या होनी चाहिए तत्स्य रहे तो जी, ये शाश्वत जीवन और निरंतर सुख किसी के पास नहीं है, ब्रह्मलोक से इनके पर्यंत को योनि में, उसके लिए प्रयत्नशील। हाँ और वो क्या करते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद और इससे उन भगवान का भक्ति करते हैं लोग, क्योंकि परमानंदमय वस्तु भगवान है, उनका सानिध्य जिस प्रकार से शीघ्र मिले, उस प्रयत्न के लिए व्यक्ति का नींद भी हराम हो जाना चाहिए। हम लोग तो यार खींच करके सोते हैं, अलार्म बोलता है यार टाइम हो गया, मंगला बोले चुप सोने। और जबकि हम लोग आत्म उत्थान के लिए ज्वाइंट किए हैं या मंदिर आए हैं, दीक्षा शिक्षा लिए हैं ना, आत्म उन्नति करने के लिए के थोड़ा नींद ज्यादा बढ़े, इसके लिए आत्मोन्नति के लिए जी, उसकी कितनी अवनति होती है उनको व्यक्ति को देखना चाहिए, और सारी अवनति का मूल कारण इच्छा। इसलिए यहां नानक की इच्छा को केवल एक उदाहरण रख करके समस्त इच्छा सोने की इच्छा थी, क्योंकि सोने की इच्छा तो वास्तव में सोने की जैसी लगती है, सोने की इच्छा सोने जैसी लगती है, खास करके भक्तों को। वो जो गृहस्थ बनाते हैं उनको तो बात टो करके जाना पड़ता है, अरे यार नहीं जाएंगे तो उधर ऑफिस में तो डांट मिलेगी या, लेकिन इधर डांट मिलेगी तो थोड़ा सुन लेंगे, निकाल थोड़ी देंगे, उधर तो निकाल देंगे नौकरी से, इसलिए उनको तो उठना पड़ता है जबरदस्ती, वो भी जबरदस्ती उठते हैं लेकिन उठना पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जब जबरदस्ती भगवत भक्ति के लिए उठेगा ना, तब भगवान देखेगा ये ठीक है, तब किसी साधु के हृदय में प्रेरणा करेंगे, इनके ऊपर कृपा थोड़ा करो, है ना, तब प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कर लेगा व्यक्ति। और जिनके ऊपर हो गई ना इनकी कृपा, बस उनके जीवन में मंगल ही मंगल, अमंगल को कहीं देख नहीं पाएगा, क्योंकि सारा अमंगल चित्त में है, ये काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य इत्यादि हमारे चित्त में पड़े हुए हैं। इसलिए हमारे आचार्य लोग उनकी शिक्षा देते हैं, और यथा स्थान नियुक्त करिया, कैसे प्रेम भक्ति चंद्रिका बोलती है कौन बंगाली है, बहुत सुंदर उक्ति है प्रेम भक्ति चंद्रिका, उनको यथास्थान नियुक्त करना चाहिए काम क्रोध मद लोभ मोह को। जी भक्त द्वेषी जन है क्रोध, जी हाँ, जो भक्तों से द्वेष करते भगवान से द्वेष करते उनके प्रति क्रोध किया जाए, जी व्यक्ति का क्रोध के ऊपर नियंत्रण आ जाएगा। ऐसे आगे सिखाते, आगे की शिक्षा में सब कुछ है, ये सारे 6 श्लोक इसके बाद वही शिक्षा है, क्या क्या किसके कारण क्या क्या चीज के ऊपर जय कर सकते हैं, और अंत में गुरु को रख करके बताया है, इसलिए मैंने कहा साधु गुरु शास्त्र, बस उनकी जो इच्छा है उनकी इच्छा की इच्छा में मिला करके व्यक्ति को साधन में अग्रसर होना चाहिए, जो इच्छा भगवान का जैसा इच्छा। अगर आज बगैर खाए वो रखना चाहते हैं ठीक है रहेंगे, लेकिन उनका भजन करेंगे, तत्व सुसमीक्षा श्री ब्रह्मा जी के संस्कृत में अपनी प्रार्थना में श्लोक बोला, कहते आत्मकृतम विपाकम, अपने ही किए हुए कर्म का फल भोगते हुए जो कुछ भी अच्छा बुरा जीवन में आता है उनको जलते हुए फिर भी जो भगवान की अनुकंपा की और जिनकी दृष्टि रहती है, इसी को कहते हैं साधक, क्योंकि ये ठीक साधक है, इसको साधक बोलते हैं, उनकी साधना में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और होगी तो भगवत इच्छा से ऐसे कड़े साधकों के जीवन से वो कमियां निकल जाती है, शीघ्राति शीघ्र वो कमियों को देख लेता है, भगवत कृपा है, यही तो कृष्ण कृपा है। हमारे चित्त में कृष्ण बैठ करके कहेंगे बेटा तेरा गलती है उनको सुधार, उनका पोषण करने के लिए परमिशन जो देती है माया देती है, भगवान नहीं, भगवान तो कैसे पर, और गुरु भी ऐसा नहीं, कुछ लोग ये सोचते कि नहीं थोड़ा बहुत धन दे दिया और धन के द्वारा फिर उनका सेवा कर लिया गुरु महाराज का, गुरु महाराज आपको इसी कामनाओं के पचड़े में पड़े रहने देंगे क्या, ठीक है इसका धन आ गया है ना, या इतना धन आया है इसलिए उनको कामना से छुड़ा दो, ये बात नहीं है। जैसे शास्त्र शासन करते हैं ऐसे वो भी शासन करते हैं जीवात्मा के ऊपर, उदंतता के कारण तो हम लोग माया में फंसे, ये हमारी उदंतता है, देखिए शास्त्र में भागवतम बोल रहा है, मतलब कैसे यार जीविका के बिना कैसे काम चलेगा, जैसे अजगर का चलता है बताइए, उदाहरण दे दिया जैसे अजगर का चलता है, अब कहिए आप, अब कुछ नहीं बोल सकते।
नहीं लेकिन यार अजगर अजगर है, आदमी आदमी है। आप यार अजगर को आदमी के साथ, अरे यार दस दस घंटा यार साधक होकर के सोते हैं तो अजगर नहीं तो और क्या है, हैं? बोले नहीं रात्रि में, अरे रात्रि में भी दस घंटा सोते हैं तो अजगर वृत्ति है, है कि नहीं? कैसे हम पृथक करें अजगर को, कैसे पृथक रखे आदमी से, बताइए जरा
जी। ये कि नहीं तो दूसरी कामना का पोषण है, लेकिन है इच्छा का पोषण। इन सारी बातों को इसलिए शास्त्र में रखा जाता है कि ये अनेक अनेक प्रकार की इच्छा हमारे चित्त में भरी पड़ी है, और उनका उपदेश वो साधु गुरु शास्त्र उनका उपदेश देकर के हमारी कमियों को दूर करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमको कुछ इस प्रकार बातें बोल करके उद्विग्य करना चाहते हैं या हमें इन भक्ति से निकालना चाहते, ऐसी बात नहीं है। वो हमारी कमियों को दूर करके उन हेतु की सिद्धि के लिए कड़े नियम के साथ पालन के साथ वो अग्रसर हो विधि भक्ति में। विश्वनाथ ठाकुर इसी में लिखे हैं, देखिए इसी श्लोक में, निरंतरम भगवत उपासना मृतम अपायन अनिहारम। कौन है? नहीं चक्रवर्ती ठाकुर। तस्मात स्वस्य भावेन जन्मनि एव ब्रह्मरदन अधनो निर्धन यात्रार्थम देह निर्वाहार्थम न येत न वांछित धनम प्रति न चेष्टेति इति वा। व्यक्ति को इच्छा नहीं करनी चाहिए, चेष्टा का बात छोड़ दीजिए, इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। वो भी धन की अत्यंत आवश्यक, इस युग में धन माना जाता है या इस संसार में इंद्रिय तर्पण हेतु अत्यंत आवश्यक धन है, लेकिन उन धन की भी स्पृहा निकाल देनी चाहिए, उनकी इच्छा भी व्यक्ति न करे। हाँ ये कह रहे हैं, वो कहते हैं अनिहा, कहते हैं अनिहा निष्कामत्वम निर्व्यापारत्वम वा गृहस्थी के लिए। बोले व्यापार भी नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं। व्यापार करते इंद्रिय व्यापार भी समझ सकते हैं, इंद्रिय व्यापार के लिए कुछ न किया जाए। इसी प्रकार कहते हैं जैसे महा अहेर अजगरस्य, फिर भी कुछ संतुष्ट नहीं होती तो साधु लोग एक उदाहरण दिया करते हैं जो कि 5 मिनट में कैसे भी करके छोड़ना चाहता हूं, कुछ प्रश्न तो आएगा ही, मुझे मालूम है, पक्का मालूम है, कहीं ना कहीं से कुछ भी खोज करके निकाल लेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा दब रही है, पूछ दब रही है, इसलिए फोन उठेगी ही उठेगी, क्योंकि पूछ दबाया है ना, ये श्लोक में पूछ को दबाया है तो अनिवार्य उठना। लेकिन एक उदाहरण, एक बार एक गुरु प्रवचन कर रहे थे, सिद्ध थे महात्मा, वो प्रवचन कर रहे थे कि भाई देखो तुम लोग दीक्षा शिक्षा लिए हैं तो तुम लोग को दूसरा कुछ नहीं करके केवल केवल हरि भक्ति करना चाहिए। तो वो एक शिष्य बोले तो महाराज केवल हरि भक्ति से थोड़ी जीविका तो चलेगी नहीं ना, माने जब आश्रम में रखते आज कल निकाल देंगे तो है ना? आप आश्रम में आज रखते हैं और कल आपने निकाल दिया तो क्या भगवान सिरे से निकाल देंगे क्या? हमारा विश्वास देखिए भगवान के प्रति है ना, ये इस अविश्वासी एक शिष्य ने थोड़ा उनके साथ आर्गुमेंट कर लिया। जब आर्गुमेंट खूब चली ना तो फिर शिष्य ने कहा अब देखिए आप तो सिद्ध है ना महात्मा, तो आप तो जानते हैं सब कुछ, आपने खाने के लिए भी मना किया, अरे आपने जीविका के लिए मना किया तो देखिए कैसे जीविका चलेगी। अगर मान लीजिए कि मुझे कल खाना मिलेगा क्या? बोले मिलेगा, निश्चित मिलेगा। हाँ,
तो बोलते ठीक है बताइए मैं कल क्या मुझे मिलेगा। बोले एक पतीला खीर।
बोलता ठीक है इसको मिलेंगे परसों। हाँ?
कल के बाद कल खीर खाना एक पतीला लिख दिया। बोले तुम्हारे भाग्य में लिखा है एक पतीला खीर लिखा है बेटा। बोले ठीक है परसों मिलते हैं हम लोग सुबह। वो घर में जाकर के उस दिन पानी भी नहीं पिया और घर वाले बोले एकादशी नहीं है यार तुम पानी पीना क्यों। अरे यार इतना कंटाल गया शाम तक तो 50 लोग ने पूछा 50 बार पूछा गया घर में। बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है चलो हम लोग चलते हैं। वो चल गया वो जा करके खेत में और थोड़े गांव से दूरी पर निकल करके बोले रात्रि बिता करके सुबह गुरु महाराज के पास सीधा चले जाएंगे। हैं तो एक पेड़ के ऊपर वो बैठ गया। बोले बस रात काटना है ना तो जैसे शाम होने जा रही थी अंधेरा लगभग होने जा रहा था वो तब तक कुछ जो ग्वाले लोग हैं वो गाय को हाँक करके जा रहे थे और कोई गांव कहाँ है वो दिखाई नहीं पड़ रहा था उनको अंधेरा हो गया था परदेशी थे। तो ये वृक्ष के नीचे आकर के रुके पता नहीं गांव कितना लंबा है गांव तो निकट था लेकिन अंधेरा था ना। बोले कितना वो यहां से दूर मालूम नहीं चलो यहीं पर ये पेड़ अच्छा है ऊपर वो थे डाली में। बोले इधर भूख लगा है भूख लगे तो गाय दोहन करो तो गाय दो राइस था खीर बना लो जल्दी से करो। नीचे पतीला पक रहा है वो शिष्य बोले यार गुरु महाराज का कुछ नहीं खीर पक रहा है लेकिन खाऊंगा तब ना पकने दो हमको क्या लेना है वो अपने लिए पकाते नहीं वो तेरे लिए पक रही है मूर्ख है ना। वो पका रहे थे खीर ठीक है तो जब खीर पूरी पकी नहीं वो तब तक तो डाकू आए बोले ये निकट गांव लगता है कोई गांव में डाकू आया है। वो लोग जैसे थे अपना गोधन लेकर के वापस बोले इसी दिशा से आवाज आ रहे वापस और पति लेकर पर खीर पक रहा है। अब डाकू लोग को उस दिन दल्ला अच्छा मिल गया गांव से है? वो दल्ला लेकर के उसी वृक्ष के नीचे आए है? और बोले देखो प्रामाणिकता से बंटवारा होना चोरी का माल अब बोले प्रामाणिकता से बांटो भाई। बोले बांटेंगे बांटेंगे भूख लगा है आओ बोले ये देखो ये खीर है। बोले आज तो वस्तु तो भगवान की कृपा हो गई। बोले इधर दल्ला मिल गया इधर खीर। तो एक कानीय व्यक्ति था एक उनका काना था वो विचार करके बोला यार कोई मासी थोड़ी इधर है मौसी कोई अपने लिए खीर रख के गई निश्चित मारने का आइडिया है देखो इधर कोई ना कोई होगा कोई ना कोई तो इधर होगा ही क्योंकि ये मारने का आइडिया है। अब भाई सबको शंका होती है तो चोरों को तो पहले से शंका हो जाएगी वो खूब शंकित हो गए वो देखने लगे चारों और उधर ये कानिया ने ऊपर देखा ये रहा देखिए। बोले उतर नीचे उतर बोले नीचे उतरूंगा लेकिन खीर नहीं खाऊंगा। बोले देखो देखो हेटर कैसे गाएगा मर जाएगा गाएगा हा पूरा पतीला खिला दिया क्या सुबह जाएगा शिष्य गुरु के पास। वास्तव में हमको विश्वास नहीं है हमारे नसीब में जो लिखा वही प्लेट में आएगा। उस दिन कहीं लेट इधर फिस्ट है ना तो उस दिन कहीं लेट हो जाएंगे आप दर्शन बर्शन में और दो चार आइटम कम मिल ही जाएगा नसीब में नहीं क्या करें है ना। अगर कोई व्यक्ति इसी प्रकार अनिच्छुक होकर के केवल भगवत इच्छा जो तस्य हेतु देकर के प्रभुपाद जी ने बोला कि आज की वृत्ति मत पाली है मेरे कुछ नहीं करना है बात नहीं डर है ठीक है चलो खाएंगे पिएंगे सोएंगे मजा नहीं तत्सव हेतु प्रयत्न उस हेतु की सिद्धि के लिए व्यक्ति को प्रयत्नशील रात दिन प्रयत्नशील रहना चाहिए जी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सात मिनट बाकी है आपके पास अभी प्रश्न आने दीजिए। माइक दो भाई माइक दो इसको प्रभु जी को दे दीजिए कुछ
जी मैं माता जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। देखिए भाई, जहां तक धन का इच्छा तो नहीं करेंगे, लेकिन खान पान के लिए क्या करेंगे? अजगर मुक्ति आ जाएगा। माता देखो, एक बात है, ये तो भाग्य के ऊपर बात नहीं है, केवल भक्तों को भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबको जो खाना पीना दे रहे हैं, मैं भूखा मरूंगा क्या? माता जी हैं, हाँ, जब भूख तो लगती है तो थोड़ा धैर्य के साथ धारण करना चाहिए। धैर्य, भगवान भूखे नहीं सोने देंगे। हाँ, वो उदाहरण है ना, लक्ष्मी जी ने एक बार तर्क कर लिया था, एक चिट्ठी को डब्बी में डाल करके, फिर वो कोई बोले, तब भगवान ने बोला भाई भोजन लाओ, बोले सबने खा लिया क्या? बोले हाँ सबने खा लिया, पूरा विश्व ने खा लिया। बाद में भगवान खाते पीते हैं, हाँ, सारे विश्व का पोषण करके। बोले खा लिया क्या? बोले खा लिया। बोले तो भगवान ने तो खाना खा लिया। उनके बाद में डब्बी खोल के दिखा रही थी लक्ष्मी जी, बोले एक चींटी को मैंने अंदर रखा है, लेकिन वो रखने के टाइम एक इधर से दाना चावल का गिर गया था, वो बैठ के खा रही थी। भजन भूख से नहीं, भजन तो भूखे पेट सुंदर होता है। खा करके तो सोना होता है, खा करके सो जाएंगे बस। अरे अरे, वो उन लोग का सिद्धांत है जो खाऊ खाऊ कर रहे, वो खाऊ गली वाले लोग हैं। भूखे पेट भजन न हो गोपाला, हाँ जी, हाँ। लेकिन कौन घंटी माला दे के गया? सबका तो चल रहा है, ठीक है, खा करके करो, कम से कम खाना खा करके तो करो। खा करके होगा नहीं, खा करके तो थोड़ा सा आलस आ जाएगा।
एक प्रश्न है मेरा, आपका व्याख्यान अति उत्तम था। मैंने कई दिन से भी सोच रही, कई व्याख्यान सुने मैंने, मेरे को एक प्रश्न ये समझ में नहीं आया कि भाग्य बड़ा है या भगवान बड़ा?
भगवान बड़े है ना, क्योंकि सबका भाग्य होते हुए भी जब तक भगवत, इसका प्रश्न है कि भाग्य बड़ा कि भगवान बड़ा? तो उनका उत्तर सीधा है भाई, भगवान बड़े हैं। क्योंकि मान लीजिए हमारे भाग्य में कुछ है, हमारे भाग्य में पूरी पृथ्वी का राजा बनने का नसीब हमारा बराबर उपस्थित होता है, और उस टाइम प्रलय का टाइम होता है, भाग्य भोगी है, गया काम से भाग्य, क्योंकि प्रलय का समय आ गया। अब नेक्स्ट पीढ़ी 2 करोड़ साल के बाद या 4 करोड़ साल के बाद में, अगर भगवान बड़े हैं तो सिर्फ भगवान कष्ट क्यों भोगते हैं? हम लोग को दिखाने के लिए कि आप लोग भी परस्पर पति पत्नी आ सकते रहेंगे ना, तो हमारे जैसा दुख भोगना पड़ेगा। ईश्वर होते हुए भी मैं दुख भोग रहा हूं, हमको दिखाने के लिए लीला हो रही है। आने दीजिए, जवाब तो ऐसा ही मिलेगा, फर्स्ट क्लास का। आने दीजिए, प्रश्न कोई है तो जी।
जो आदमी आप करता उसको धन धन या भौतिक दृष्टि से जन्म रहता है, और दूसरा बात ये कि आज से 10-20 साल पहले जैसे लोगों को डर था पाप करने के, डर था दुनिया क्या कहेगी, आज वो डर हटी है, इसका क्या करना चाहिए?
देखिए, जो डर हट गया है वो वस्तु तो उन कलयुग ने डर को हटा दिया है। कलह इतना बढ़ गया ना, व्यक्ति के चित्त में उतनी उद्विग्नता बढ़ा दिया है, और इंद्रिय तर्पण की लालसा इतनी बढ़ गई, 1000 गुना बढ़ जाती है। सतयुग में 3 युग तक जो लालसा, जो बल रहता है इंद्रियों में प्रबल इच्छा, वो इच्छा 1000 गुनी प्रबल हो गई है कलयुग में। इसके कारण ये सब हो रहा है। रही बात कि पापी व्यक्ति सुखी दिखाई पड़ता है और पुण्यवान व्यक्ति दुखी दिखाई पड़ता है, तो बहुत अच्छी बात है, दुख में रहते हुए भजन होगा, भगवान भजन कराना चाहते हैं।
और कोई जिज्ञासा?
राधे राधे, मैं कोलकाता से नमो कुमार पाई। अच्छा,
दूर रखे थोड़ा। हाँ जी,
सनातन धर्म में जितना त्याग का बात है
जी,
मैं नाम नहीं लेना चाहता।
हाँ, उतना दूसरे धर्म में नहीं है
और दूसरे संप्रदाय में भोग का बात है।
हाँ जी,
तो आज के दिन में देखा जाता है कि उस संप्रदाय के 55 देश है, 100 के ज्यादा देश
जो भी है,
सनातन धर्म में एक भी हमारे लिए देश नहीं। अगर भारत भी छूट जाए तो हमको तो बंगल सागर या प्रशांत महासागर में डुबकी लगाना पड़ेगा।
देखिए, मैं समझ गया, आपका पॉइंट समझ गया मैं। देखिए, ये कलयुग होने के कारण सुनिश्चित सनातन धर्म जो है वो लगभग डाउन जैसा हो गया है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि वो नष्ट हो गया है। देखिए, ये की व्यक्ति ने, श्रील प्रभुपाद महाराज ने उन सनातन धर्म का प्रचार केवल 50 साल के भीतर कितना, 10 साल में कितना कर दिया था, छोड़िए। बोले पूरे पृथ्वी के लोग हिंदू बन रहे कि नहीं, कंठी माला तिलक हिंदू है, जरूरत नहीं है डूबने का, तरने का जरूरत है। प्रभु जी तरो तरो, अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम। अरे डूब करके क्यों मरेंगे, जब तैराक हमारे साथ है और गुरु हमारे साथ है, नौका में बैठे हुए हैं। यार डूबने की बात मत कीजिए, हरे कृष्ण मोमेंट एक महान नौका है जी। हाँ जी महाराज जी, 9 बज रहा लास्ट प्रश्न। अब लास्ट प्रश्न में 2-4-5 मुझे मालूम था इसके 7 मिनट रखा मैं।
हरे कृष्ण, मैं 2 साल से मतलब भारत पता करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा इतना डिमांड कर देता है, 8 लाख 10 लाख इतना तो कभी हो ही नहीं पाया, मतलब क्या नहीं है।
मैं पूरा समझ नहीं पाया उनकी बात, सुन रहा था। हाँ जी आप बताइए।
मतलब कि मैं अभी चेन्नई में काम करता था, तो 2 साल से मेरा इच्छा है जो भगवत कथा कराने के लिए, लेकिन मैं बहुत जगह फोन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो 1 लाख तक मैं खर्चा कर सकता हूँ, बहुत हूँ सर, तो मतलब कि इतना डिमांड कर देता है, 10 लाख चाहिए, 8 लाख चाहिए, 12 लाख चाहिए, इतना हमारे पास हो नहीं पाया कभी, जो हम मतलब अपना इच्छा अनुसार कुछ कर पाए।
देखिए, इच्छा कभी समाप्त होने वाली नहीं है, वो इच्छा पर इच्छा वो तो चलती जाएगी। इच्छा समाप्ति यहां पर होती है कृष्ण कथा से, जो भगवत कथा श्रवण करेंगे ना, उस कथा श्रवण से हमको बुद्धि मिलेगा। देखिए आज कितना सुंदर बुद्धि मिला भाई, किसी भी चीज की इच्छा नहीं करनी चाहिए, धन की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना, इतनी सुंदर शिक्षा। और इच्छा नहीं रखने पर भी वस्तु तो मिलना है, और जो वस्तु नसीब में है वो मिलेगा ही। देखिए करोड़ों नसीब में है ना, तो आज हालत खराब है कल ठीक हो सकता है, है? अगर नहीं है तो उनके लिए प्रयत्न करने पर भी मिलने वाला, छोड़ो ना यार नसीब को, ये सब हाथ दिखा रहे हो, पालतू में दिखा रहे हो, हमारे हाथ में देखिए। हमको एक व्यक्ति बोल रहा था, प्रभु जी आपकी ये रेखा थोड़ी टर्न ले गई है और इसको थोड़ा ज्वाइंट नहीं हुआ, अरे आपका बहुत बड़ा धन का योग आप जहां से निकले। मैं बोला टेढ़ी होकर के इधर भी आ जाए ना, हमको कोई फर्क नहीं मिला, क्योंकि मेरा तो चलता रहता है, उल्टा होकर के आ जाए ना, हमको क्या फर्क गिरेगा, कुछ नहीं। आप ज्वाइंट होने का बात करते हो, बोले थोड़ा सा कटा, बस इतना नहीं कटा होता था ना, आपके भाग्य में उतना धन था। अरे मैं बोला वो टेढ़ा होकर के इधर आने दो, कोई फर्क नहीं है। क्यों? सबसे बड़ा भाग्य यही है कि जिनके मुख में हरिनाम उच्चारण हो, अरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे 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 राम, श्रीमद् भागवतम की, श्रीमद् प्रभुपाद की।